ऊंटारी बातें आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
राम 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 सा। आज है महीने रो पहलो शुक्रवार और बजिए सिंजारी 5:30। तुम्हें कार्यक्रम लेर हाजिरा ऊंटारी बाता। और लो सा देखो गौरा बहन भी आ रहे हैं भाई बेटिया साथ है। राम राम गौरा बहन।
राम 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 बोमजी भाई। राम राम
राम राम। बैठो बैठो सा बैठो।
और बोमजी भाई देखो सगले ऊंट पालका ने जिको अपनी ऊंटारी बाता सुने नी वरने भी अपना घणन घणा
राम राम।
बोमजी भाई एक बात बताओ कि जब तक ऊंटारी बाता चौपाल में नहीं होती नी जने ऊंट पालका ने काई लागतो थे बताओ।
अरे घबरा बहन बहने लाग तो के उष्ट अनुसंधान केंद्र पावना ज्ञानी है पर बारे कने किया जावा और किया जानकारी लेवा आ एक मेरे वास्ते समस्या थी।
समस्या ही नहीं हाँ। पर भोमजी भाई अबे तो इन समस्या रो समाधान कर दियो हाँ। ऊंटारी बाता चालू कर दी ऊंट पालका सारू।
वा तो है घबरा बहन
हाँ। पर भोमजी भाई अबे जी को ऊंट पालक ऊंटारी बाता नहीं सुने हाँ। या चौपाल माए नहीं आवे ऊंडे
हाँ।
सारू देखो मने एक दुओ याद आवे
तो बताओ
बताओ
हाँ।
देखो ऊंचा ते अड़गा ऊंचा
हाँ।
ते अड़गा भूई पड़िया भावे नहीं धूड़ी पाखली फिरता धूड़ी पाखली फिरता जीव गमायो जेठवा।
जीव गमायो जेठवा बहुत ही अच्छो दुओ सुनाये थे पर गौरा बहन आपा होते ऊंट पालक आ गलती नहीं कर सके और आपा कर्ण भी कोनी देवा
कोनी करण देवा कोनी करण देवा बोमजी भाई क्योंकि इतनी मेहनत आपा करा ऊंट रावा घरा सु और ए ज्ञानी पावण आवे
कितनी दूर सु आवे
दूर दूर सु पावण आवे आपा ने जानकारी देवने और आपा नहीं सुना जाने आ गलती मोटी हो जावे नहीं आपने साथे साथे बोमजी भाई आ गलती राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर भी कोनी करण देवे। और देखो एक नहीं महीने रे महीने दो शुक्रवार ने ऊंटारी बाता चालू कर दी है।
बिल्कुल ऊंटारी बाता शुरू कर दी है
पर बोमजी भाई आज पावना कौन पधारिया है।
आज पावना भी बहुत दूर से पधारिया है करनाल हरियाणा से और आज पधारिया है अपने जानकारी देवन सारू डॉक्टर आरजव शर्मा आप निदेशक है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा में। और डॉक्टर साहब मैं आज आपने बता दूं मैं आज के विषय पर बात करने चाह रहा हूं विषय पशु जैव विविधता संरक्षण में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो रो योगदान इन विषय पर आज मैं बातचीत करता
तो यार स्वागत करा और याने करला राम राम।
बिल्कुल डॉक्टर साहब आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है और
ऊंटारे गलवानी सु कहीं कोनी वेनी इयारिया देखो मारी बाता और बोमजी भाई री बाता सु तो पार पड़े कोनी तो आप जिको बाता बताओ लानी वे माने ऊंट पालका रे सारू अमोल वेला तो डॉक्टर साहब देखो सगला सु पहला तो आई बता दो पशु पालका ने ऊंट पालका ने के पशु जैव विविधता केवे किन्ने है देखो मोटी बात रो खुलासो हो जावे नी जण लारे गणकरी बाता नी जको वाने सॉरी सॉरी समझ में आवेला।
गमरा बेन जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। भारत एक्चुअली एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुधन का एक बहुत ही विशेष महत्व रहा है। मनुष्य ने पशुपालन कई चीजों के लिए किया है। हमने उनसे दूध लिया, हमने उनसे मांस लिया, हमने उनसे अंडा लिया, हमने उनसे ऊन ली, हमने उनको सवारी के रूप में इस्तेमाल किया। इन सभी के लिए हमारे देश में अलग अलग जलवायु में अलग अलग स्थान पर हमने गाय पाली है, भैंस पाली है, ऊंट पाले हैं, खच्चर पाले हैं, घोड़ा पाला है, बकरी पाली है, मुर्गी पाली है। इस तरह से जो अलग अलग ये पशुधन है जिसमें बहुत सारी विविधता है, हर पशुधन में अलग अलग नस्लें हैं। हमारे देश के अंदर इस समय कुल 151 किस्म की नस्लें हैं और जो विभिन्न प्रकार की पशु प्रजातियों में पाई जाती हैं। इतनी बड़ी विविधता को ही हम पशु जैव विविधता कहते हैं और इसका उपयोग हम अपने भलाई के लिए कर रहे हैं।
बोमजी भाई देखो समझ में आएगी क्योंकि देखो आप भारी शब्द आएगी नी
जन
मन लागियो कि देखो सगला रे दिमाग में खुलासो पहली हो जावे नी तो ठीक रहे जहाँ डॉक्टर साहब बतायो गाय भैंस घोड़ा बकरी मुर्गी ए तो अपन सगला ठापण छे विविधता रो मतलब समझना बहुत जरूरी हो और समझ में आएगी ने हमें देखो अपन है सॉरी सॉरी बात समझ में आवे।
अब डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पशु जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है।
हाँ भौम जी भाई, ऐसा है कि हमारे देश में पशु जैव विविधता शुरू से ही बहुत अधिक मात्रा में रही है और हम लोग भाग्यशाली हैं कि जितनी जैव विविधता भारत में है उतनी किसी भी देश में नहीं है। और ये जैव विविधता क्यों हुई? हमारे देश में जलवायु अलग है, हमारे देश के अंदर मिट्टी अलग है, हमारे देश में एक ही समय पर कहीं बर्फ पड़ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं मरुस्थल है। हर प्रकार की जलवायु के अंदर अपने आप को समाने के लिए हमारे पास अलग अलग किस्म की नस्लें भारत में पाई गई। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 50 वर्षों में कुछ हमारी अपनी लालच के कारण, कुछ हमारी अपनी गलत नीतियों के कारण, हमने ये कोशिश करी कि हम इस पशु जैव विविधता को ऐसे इस्तेमाल करें कि रातों रात हम इससे उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा दें। उस चक्कर में क्या हुआ कि हमने गायों के अंदर संकर प्रजनन किया, हमने बकरियों में किया, हमने भेड़ों में किया, हमने मुर्गियों में किया और इसका एक हमें बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ा क्योंकि हमारी जो अपनी पशु जैव विविधता थी, जो भारत की ही अपनी थी, वो धीरे धीरे लुप्त होती गई। पिछले 30-40 वर्षों से ये प्रयास चल रहा है कि उस खोई हुई जैव विविधता को कैसे वापस लाया जाए। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है, इसके लिए गैर सरकारी संस्थाएं प्रयत्नशील है, इसके लिए वैज्ञानिक प्रयत्नशील है और अब ये है आपके जो आम किसान है उसको हम जागरूक करना चाहते हैं कि देखो भाई, जो हम पशु जैव विविधता जो भारत की अपनी देन थी, जो हम खो चुके हैं, उसको संभाल के रखिए, उसका संरक्षण करिए, उसमें जो गुण है उसको आप देखिए। जो ये संकर प्रजाति की नस्लें हैं ये थोड़े समय के लिए तो ज्यादा उत्पादन देती हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो ऊन हो, लेकिन कुछ समय के बाद ये सब नष्ट हो जाती हैं और उनका उत्पादन बहुत तेजी से गिर जाता है। और उसका कारण सिंपली है कि जो हमारी अपनी जैव विविधता है वो इसी जलवायु के अंदर पैदा हुई है, उसी वातावरण के अंदर पले हैं, तो वो यहाँ के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो संकर नस्ल में या विदेशी नस्लों के लालच में ना जाकर के हमें अपनी ही जैव विविधता का संरक्षण करना है।
समझ में आई कि आपने अपनी पशु जैव विविधता रो संरक्षण करना क्यों जरूरी है, आज टाबर जी को है इन चीजें ने भूलता जा रहा है। और डॉक्टर साहब देखो एक बात और आपने पूछू क्योंकि नुवो जमानो है, जूनी बातें लारे छोड़ता जा रहा है। देखो सवाल पूछना तो नहीं चाहिए पर तो भी नुवो जमाने रे टाबरा सारू पूछना पड़ेगा क्योंकि विदेशी चीजा रे कानी आकर्षित हुए, संकर नस्ला रे कानी आकर्षित हुए, पर देसी नस्ला जिके रे मायने जिको विशेषता ही मायता ने ठा है पर ए भूलता जा रहा है। तो आप यानी अब बताओ कि पशु और देसी नस्ला वे वीर मायने कहीं कहीं विशेषताएं हो।
आपने सही कहा कि आज का किसान ये चाहेगा कि मुझे ज्यादा दूध मिले, आज का किसान चाहेगा कि मुझे मुर्गी से ज्यादा अंडे मिले, लेकिन हम उस पशु की उपयोगिता, एक जो पूरे जीवन की उपयोगिता है उसमें न जा करके हम एक कुछ समय की उपयोगिता के ऊपर जोर दे रहे हैं। मुझे बताइए कि ऐसे पशु का क्या फायदा है कि जो हमारी वातावरण के अंदर ज्यादा बीमार पड़ता है। ठीक है उसने दूध आपको दे दिया 10-12 किलो रोज का, लेकिन आपको उसकी इलाज पर खर्च करना पड़ रहा है, इस गर्मी को वो सहन नहीं कर पा रहा है, ट्रॉपिकल डिजीजे होती है जो भारत जैसे होती है उसमें बहुत परेशानी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो ज्यादा उत्पादन देते हैं ये केवल कुछ समय के लिए देते हैं। हमारी जो देसी किस्म की नस्लें हैं, चाहे गाय है, भैंस है, मुर्गी है, भेड़ है या बकरी है, उनको उनकी उत्पादन क्षमता कई कई साल तक होती है, वो बीमारियों से लड़ सकते हैं, उनके ऊपर खर्चा कम आता है, उनको रखने के लिए कोई बहुत विशेष रूप से गृह व्यवस्था नहीं चाहिए, उनकी बीमारियों से बच गए, दवाइयों से बच गए, मैनेजमेंट से बच गए। तो इस प्रकार से अगर हम एक होलिस्टिक वे में देखें, पूर्ण रूप में देखें, तो जो हमारी अपनी नस्लें हैं उनसे हमें ज्यादा लाभ है और जो विदेशी नस्लें हैं उनसे हमें कम लाभ है।
देखो बात तो बहुत ही खरी कही है गौरा बहन के उत्पादक ज्यादा देवे है पर बियारो जो रख रखाव है बियारो स्वास्थ्य ने लेपर बहुत चिंता है और बहुत पीछा भी लागे।
मारी तो आज समझ में आई है कि यारी बात सुन, नुवे जमाने रा जो टाबरिया नी पशु पालक है, ऊंट पालक है, मारे दिमाग रे खिड़कियां जरूर खुल गई वेला, पर वारी खिड़कियां खुले नहीं खुले मारी पखाल तो उचकन लाग गई है। अब गीतरलो बारे कार्ड नहीं पड़ी मने तो पावणारी मनवार सर।
बिल्कुल सा, तो आप सुनो गौरा बहन नी पखाल सु एक दुख।
प्यारा सावन आयो
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर
और आप इन बेड़ा सुन रिया हो ऊंटारी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल री प्रस्तुति और आज चौपाल में जानकारी देने सर बता रहे हैं डॉक्टर आरजव शर्मा, आप निदेशक है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा में और आज आप बातचीत करिया पशु जैव विविधता संरक्षण में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो रो योगदान।
और डॉक्टर साहब देखो आज आप अठे पधारे ओडा नी जणा छोटी मोटी जिको भी शंका मा है नी वारो समाधान कर दो। देखो मैं गांव रे मायने रेर कोई बात बतावा नी तो टाबरिया दोरे समझे दोरी माने के वाने लगे के नहीं या कोनी वे, क्योंकि वाने क्या लगे के विदेशी है संकर नस्ल आए वे ज्यादा उत्पादन देवे है ज्यादा फायदो देवे तो पछे मैं देसी नस्ला रो संरक्षण क्यों करा वाने क्यों पाला। आप पधारियोड़ा होनी तो आ चौकी तरीके हूँ बता दो के भाई क्यों पालनी चीजें देसी नस्ला वाने।
देखिए गौरव बहन जी, सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि पशु की उपयोगिता केवल उसके दूध पर ही निर्भर है। दूध मेरे ख्याल से बहुत छोटा सा विषय है, पशु की उपयोगिता उससे बहुत ज्यादा है और देश के ज्यादातर हिस्सों में खेतों में काम करने के लिए आज भी बैलों की आवश्यकता पड़ती है। वो काम केवल देसी नस्ल की बैल ही कर सकते हैं। हमने शोध भी किए हैं, विदेशी नस्लों के बैल हैं, संकर नस्लों के बैल हैं, वो खेतों में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनकी गायें थोड़ा दूध दे देती हैं लेकिन जो नर पशु है वो उसकी उपयोगिता बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमारी अपनी भैंस की कुछ नस्लें हैं, जैसे भदावरी एक नस्ल है जिसके अंदर फैट परसेंटेज जो वसा है वो 10-12% होती है, लेकिन संकर नस्ल की जो गाय है उनका दूध में 3-3.5% से फैट ज्यादा नहीं होता है। आज भी हिंदुस्तान के काफी लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक दूध में फैट या वसा की मात्रा ज्यादा ना हो तो उसका स्वाद ही नहीं आता है। हमारे देश में एक कड़कनाथ नाम की एक बड़ी अच्छी नस्ल की मुर्गी है, उसका जो मीट होता है उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। मैं ऊंट की बात कर सकता हूँ, अभी हमने गुजरात में एक ऊंट की नस्ल है, कराही नस्ल कहते हैं उसको। उसकी विशेषता यह है कि वो ऐसे स्थान पर रहती है जहाँ की समुद्र और जमीन मिलती है, वहां पर और नस्लें काम नहीं कर सकती हैं। उसकी जो खाल होती है उसमें इतनी चमक होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी यह है कि वो जो सेलाइन पानी होता है, नमकीन पानी होता है समुद्र के, उसके बाद भी बच जाती है। इसी तरह से हर नस्ल के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है और हर हमारे हिंदुस्तान की नस्ल कम से कम जो यहाँ ट्रॉपिकल बीमारियां हैं उनसे लड़ने की क्षमता पूरी है और उनके लिए कोई विशेष प्रकार का आहार नहीं चाहिए। जो हमारे जैसे हम कहते हैं कि गेहूं काटने के बाद स्ट्रॉ मिल गया या पैडी के बाद मिल गया और जो बचा कुचा दाना ना भी दें उसको तो उस पर वो सर्वाइव कर सकती है। इसके विपरीत संकर नस्लें, उनको एक विशेष आवास व्यवस्था चाहिए, उनको एक विशेष चिकित्सा व्यवस्था चाहिए, उनके दूध में फैट भी कम है और सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि 2 या 3 ब्यांत के बाद उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है और जो उनका नर पशु है वो तो किसी किसी काम का रहता ही नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा बाजार में सब्जी मंडियों में ये संकर नस्ल के जो सांड होते हैं ऐसे घूमते रहते हैं क्योंकि उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कुल मिलाकर के पशुधन को पूरे एक व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो देसी नस्ल के पशु, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे सुअर हो, वो विदेशी नस्ल और संकर नस्ल के सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए।
बोम जी भाई, अब नफा नुकसान देख कर समझ में आ जाए के देसी नस्ल रो कहीं फायदो है, वारो संरक्षण क्यों करना चाहिए, वाने क्यों रखनी चाहिए।
डॉक्टर साहब, अब आप माने आप बताओ कि पशु जैव विविधता संरक्षण में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो आप रो योगदान किन बात दे रही है।
हाँ भौमजी भाई, जब हमने देखा कि हमारी पशु जैव विविधता विशेष रूप से खत्म होती जा रही है, हमारी अपनी जो देसी नस्ल के पशु हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो निसंदेह भारत सरकार को चिंता हुई और उस समय कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ सलाहकारों ने ये सलाह दी कि इसके ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर का शोध संसाधन किया करना चाहिए, शोध संस्थान के लिए संस्थान बनना चाहिए जो करनाल में बना, जिसको हम राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के नाम से जानते हैं। इस ब्यूरो को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, पर सबसे पहली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो दी गई है वो ये है, हम संरक्षण करने की जो बात करते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में है क्या, हमारे पास जो हम कहते हैं कि जैविक खजाना है, ये जैविक खजाना है क्या, हमारे पास कितनी किस्म के पशु हैं, कितनी नस्लें हैं हर पशु के अंदर, कितनी संख्या है, उनमें क्या गुणवत्ता है उनको चिन्हित करने का सबसे बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और उसके लिए हम सबसे पहले देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं, हमें कोई ये बताता है कि हमारे पास एक पशुओं की कुछ संख्या है जो देखने में एक जैसे लगते हैं या उत्पादन में एक जैसे हैं। हमारे वैज्ञानिक वहां जाकर के अनुसंधान करते हैं, खासतौर से उनके जो मापदंड हमने बना रखे हैं उनके चिन्हित करते हैं, उनके गुणों पर देखते हैं, फिर उनको हम मॉलिक्यूलर लेवल पर भी जाकर के देखते हैं कि ये एक विशेष किस्म की नस्ल क्या वास्तव में दूसरी नस्ल से अलग है, और फिर उसको हम पंजीकृत करते हैं। आज हमारे देश के अंदर पंजीकृत नस्लों की संख्या बहुत कम है, लेकिन हमने पिछले 25 सालों के प्रयास से देश में 151 पशुओं की नस्लों का पंजीकरण कर रखा है, और ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। आज हमारे देश में गायों की 39 नस्लें हैं, भैंसों की 13 नस्लें हैं, भेड़ों की 40 नस्लें हैं, बकरियों की 24 नस्लें हैं, ऊँटों की 9 नस्लें हैं, घोड़ों की 6 नस्लें हैं, मुर्गियों की 16 नस्लें हैं, और यहाँ तक कि हमने गधे की भी एक नस्ल का पंजीकरण कर रखा है। इसके अलावा भी हमारे देश में याक है, उत्तरी पूर्वी भारत में मिथुन है, ऐसे बहुत सारे पशु हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कैरेक्टराइजेशन, चिन्हित करना इनके गुण, अपना गुण सिर्फ आकार पे या देखने पे नहीं बल्कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनकी उत्पादन क्षमता क्या है, उनके अंदर ऐसे क्या विशेष गुण हैं कि जो उनको इस काबिल बनाते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें बहुत ज्यादा होती है, या उनमें क्या खासियत है। और अभी मैं यहाँ किसान भाइयों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारी देसी नस्लें हैं गायों की, उनके बारे में एक न्यूजीलैंड के अंदर रिसर्च हुई थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, ये पाया गया कि इनके दूध में एक प्रोटीन होता है जिसको उन्होंने नाम दिया A2 प्रोटीन, और जो विदेशी किस्म की नस्लें हैं या संकर नस्लें हैं उनमें पाया गया A1 प्रोटीन। उन्होंने शोध से ये सिद्ध किया है कि जो A2 प्रोटीन होता है ये हमारे जो बीमारियां होती हैं जैसे हृदय की बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, डायबिटीज की बीमारियां हैं, ऑटिज्म की बीमारियां हैं, उन लोगों को ये बीमारियां नहीं होती हैं जो A2 किस्म का दूध पीते हैं। उसी अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए हमारे संस्थान ने रिसर्च करी और हमने कहा कि चलो भाई जब ये इसमें कुछ ऐसी चीज है तो हम भी देखते हैं। हमने देखा कि हमारे यहाँ जो 39 नस्लें हैं गाय की और जो 13 नस्लें भैंस की हैं, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन सभी नस्लों में जो A2 प्रोटीन है, जो विशेष प्रोटीन है, ये लगभग 95% से 100% पाया गया। इसके विपरीत जो हमारे यहाँ विदेशी नस्लें हैं या संकर नस्लें हैं उसमें ये इसकी संख्या, इसका लेवल बहुत कम पाया गया है। ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जो हमारे भारत के नस्लों के पशुओं का जो दूध होता है उसमें जो A2 प्रोटीन होता है वो हमें डायबिटीज, मेटाबॉलिक बीमारियां, हृदय की बीमारियां, मानसिक बीमारियां, इनसे लड़ने की क्षमता देता है। और साथ साथ किसान भाइयों को मैं ये भी कहूंगा कि हमारे ब्यूरो के अंदर एक जीन बैंक है जिसमें अलग अलग पशुओं के हमने वीर रखे हुए हैं, अगर किसी को आवश्यकता हो तो हमें कॉन्टेक्ट करके वो वहां से मंगा सकता है।
ओम जी भाई देखो घणकरे पशुओं की बात करी के घणकरो कामठ है हो रियो है पशु जैव विविधता संरक्षण सारू। डॉक्टर साहब देखो बात करा ऊंटा रे नस्ल सुधार री संरक्षण री तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर इनसु बराबर जुड़ियोडो है और कार्यक्रम भी चालू करियो है ऊंटा री बात। पर बात करा आपा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो री तो ऊंटा माथे अठे कई कई अनुसंधान हो रिया है जिनसु के ऊंटा रे संरक्षण और संवर्धन सारू फायदो हो सके।
पशु संरक्षण के अंदर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अभी इसकी महत्वता है वो आम आदमी को नहीं पता है। हम ये चाहते हैं जन जन के ये पता लगे कि हमारे अपनी देसी पशुओं का संरक्षण का क्या फायदा है। आज आपको हो सकता है वो ना दिखाई दे लेकिन कल वो आपको पता लगेगा कि हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। उसी किस्म के अंदर हमारे अलग अलग अनुसंधान केंद्र हैं और जैसा आप जानते हैं बीकानेर के अंदर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है और उसमें माध्यम से हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो भी एक हमारा कैरेक्टराइजेशन के ऊपर है। लेकिन साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को एक संदेश देना है कि देखो भाइयों ये नस्ल लिए उपयोगी है। और उसमें मैं डॉक्टर मेहता का भी बहुत विशेष रूप से तारीफ करता हूं कि आपके आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने ऊंटा री बाता का कार्यक्रम चलाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाई ये अवश्य समझ गए होंगे कि हमारे अपनी देसी नस्लों के जो ऊंट हैं उनका संरक्षण कितना जरूरी है और उनकी उपयोगिता आज नहीं तो कल तो सिद्ध हो जाएगी।
बोम जी भाई
हाँ।
जी सोरो करवा दियो डॉक्टर साहब तो हैं यारी बाता सुन अबार तक जितनी भी बाता सुनी है नी
हाँ।
जी सोरो गयो अब ए तो आपने सारू मोकली सामग्री ले रहा है
हाँ।
ज्ञान री आपने सारू ऊंट पाल का सारू
हाँ।
पर मैं पखाल रे मायने देखो यारी मनवार सारू गीत तो गणकरा गालर लाई हूँ
हाँ।
पर आज या ने पूछा ला की यारी दायरो गीत सुनला तो किसो करे।
डॉक्टर साहब आपने पसंद को गीत मैंने बताओ।
हाँ एक गीत है जब कोई बात बिगड़ जाए।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा।
सुनियो डॉक्टर साहब की पसंद रो गीत लो, और आज आप बातचीत कर रहे हैं पशु जैव विविधता संरक्षण माया राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो रो योगदान, और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं उंटारी बाता आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति। और जानकारी देवन सर पधारे हैं डॉक्टर आरजव शर्मा, आप निदेशक है राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा में। और अब डॉक्टर साहब पूछना चाहूँ, कोई भी कार्यक्रम जिसकी सफलता है बा जद वे के वो कार्यक्रम की सूचना जन जन तक पहुँचे, उंटारी बाता कार्यक्रम सु घना ऊंट पालक जोड़े और फायदा उठावे, इन सारू आकाशवाणी तो आप प्रयास कर ही रही है, आप विभाग किन भात प्रचार प्रसार कर रही है वो हमारे ऊंट पालक भाई ने बताओ साहब।
भम जी भाई, आपने सही बात कही कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसका संदेश जन जन तक पहुंचे। इसके लिए हमारा जो संस्थान है वो दो रूप से प्रयास कर रहा है। एक तो ये है कि हम प्रयोगशाला के अंदर शोध करते हैं, उसके माध्यम से हम वैज्ञानिकों को बताते हैं कि एक विशेष नस्ल में क्या उपयोगिता है, क्या उसमें गुण है। फिर इस देश के अंदर जो भी पॉलिसीज बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, उसके लिए हमने एक अपना प्रोग्राम बना रखा है कि हम हर 3 महीने के बाद हम एक राज्य के राजधानी में जाते हैं, वहां पर एक हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम करते हैं, यानी कि बड़े बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग होती है जिसमें मंत्री से लेकर के सेक्रेटरी से लेकर के और हर राज्य का जो अधिकारी होते हैं पशुधन अधिकारी, उनको बुला करके हम पूरे दिन के विचार विमर्श करते हैं और हमको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो प्रजनन नीति है वो इस ढंग से बनानी चाहिए कि जिसके अंदर जो हमारी स्थानीय नस्लें हैं उनका पूरा उपयोग होना चाहिए। अब दो अलग मुद्दे हो गए, एक तो हो गया कि जो ये कार्यक्रम और नीति बनाते हैं उनको हम जागरण करते हैं, दूसरा वो लोग किसान भाई जो वास्तव में हकदार हैं जिनके पास वो पशुधन है, एक एक ग्रुप के पास पशुधन है एक कार्यक्रम बनाता है, कार्यक्रम जो बनाने वाले हैं उनको हम अलग ढंग से अप्रोच करते हैं कि वो अपनी नीतियां ऐसी बनाएं कि पशुधन का संरक्षण। दूसरा जो कार्यक्रम है हमारा वो सीधा है कि हम जो किसान भाई हैं जिनके पास ये सभी पशुधन है उसको हम एक माध्यम से प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ पूरे देश के अंदर अलग अलग सेंटर्स हैं, अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से हम गोष्ठियां करते हैं, किसान गोष्ठी करते हैं, और जैसा आपका ये बहुत सफल कार्यक्रम उंटारी बाता चल रहा है इसके माध्यम से हम एक प्रचार फैलाते हैं, हम एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। डीडी किसान में संरक्षण के ऊपर लगभग हर महीने हमारा एक आधा घंटे एक घंटे का कार्यक्रम आता है जिसमें कोई ना कोई वैज्ञानिक लोगों को बताता है। तो इस प्रकार से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए और गोष्ठियां करते हैं राज्य स्तर पर। उसमें हमारा मकसद है कि जो इस पॉलिसी नीतियां बना रहे हैं उनको भी जागरूकता पैदा होनी चाहिए।
और भारत जी का प्रदेश राज्य का भी पशुपालक भाई है भी, यानी आपका संदेश देना चाहो।
बस किसान भाइयों, मेरा संदेश तो यही है कि आप अपनी जो आपके पास ये दौलत है पशुधन की जो दौलत है उसको पहचानिए, उसको समझिए, उसका संरक्षण संरक्षण करिए, लेकिन मात्र संरक्षण कहने से नहीं होता है, संरक्षण के लिए उसका आपको उत्पादन बढ़ाना भी होगा, आपको प्रयास करने होंगे, चाहे वो उसका रखरखाव हो, चाहे खान पीन हो, और चाहे उसकी जो आनुवंशिक उसमें जो गुण है उसको बढ़ाना हो, उसके लिए उनका आप जो ब्रीडिंग कराएं, प्रजनन कराएं, वो एक अच्छे सांड से कराएं या भेड़ बकरी हैं, ऊंट हैं, जो भी हैं, मतलब उसके लिए जो आप प्रजनन कराएं वो उच्च कोटि के वीर से कराएं, उच्च कोटि के सांड से कराएं, जिससे उनका विकास हो, आपका लाभ हो।
और सही बात भी गौराबेन के, देश रो जो भी किसान है वो आर्थिक रूप से जब समृद्ध हो सी तो देश भी समृद्ध हो सी। और मैं समृद्ध हुआ, आप
कागदास हूँ, ठिकानो बताओ भगत हो रही है
तो बताओ तो भैया कागदियो और पेन है नहीं खने हाँ है जन अब ठिकानो लिखो सा उंटारी बाता कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर और माने आप रे अनमोल सुझाव री जरूर तेजा आप सबरो कार्यक्रम में बढ़िया से बढ़िया और बढ़िया जानकारी में देश का ज्ञानी लुगार माध्यम से
सुझाव रे साथे साथे भोमजी भाई देखो कोई आपकी समस्या लिखनी चाहे नी कई बार क्या हुआ की आपने दिमाग में नहीं आवे लेकिन जो ऊंट पालक है बीरे कोई समस्या नहीं तो वो कागज लिखे नी तो भी राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र से पावन आवन ने तैयार बैठा है कागज रे मायने वे आपकी समस्या है कोई बात है कुछ भी लिखना चाहे नी तो निसंकोच और आपने अठे लिख सके है।
तो गौरवबेन आज आप बातचीत करी पशु जैव विविधता संरक्षण माय राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो रो योगदान और आज जानकारी देवन सर पधारे है डॉक्टर आरजब शर्मा आप निदेशक है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल में। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया वीर सारू में आपने करा धन्यवाद और आपने में करा
राम
राम राम।
तो सा आभार आप सुन रिया था आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बाता। प्रस्तुति थी श्री अमित सिंह और श्री मिलिंद पांडेरी। सहभागिता थी श्रीमती प्रभा थानवी और राम सहाय हर्ष।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
उंटारी बातें आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।